नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 10 मई 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के तहत संयुक्त राष्ट्र का एक नया कार्यक्रम रखेगा संदिग्ध आतंकवादियों की यात्राओं पर नजर। लीबिया में एम्बुलेंस को निशाना बनाए जाने की संयुक्त राष्ट्र मानवीय संगठनों ने कड़ी निंदा की। निकट पूर्व और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र के देशों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग अल्प पोषण का शिकार, और टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद के लिए 6 नए पैरोकारों के नाम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। संदिग्ध आतंकवादियों की आवाजाही पर नजर रखने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं के बारे में एक अत्याधुनिक गो ट्रैवल नामक सॉफ्टवेयर के जरिए सटीक जानकारी एकत्र की जाएगी। इससे आतंकवादियों की पहचान करने और उनकी आतंकी गतिविधियों को विफल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम को यूनाइटेड नेशंस काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण खोने के बाद से हजारों विदेशी आतंकी लड़ाके हिंसाग्रस्त इलाकों से वापस घर लौटने की कोशिशों में जुटे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हुआ है। हाल के सालों में 110 देशों के 40,000 से ज्यादा विदेशी लड़ाकों ने आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक की यात्राएं की। इस नए कार्यक्रम को भारत, जापान, नीदरलैंड्स, कतर और सऊदी अरब से वित्तीय मदद प्राप्त है। इससे पहले आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों के तहत कुछ ही दिन पहले सुरक्षा परिषद ने जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन के नेता मोहम्मद मसूद अजहर अलवी को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल करने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता ने इसे आतंकवाद की लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का एक अहम हिस्सा बताया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में एक एम्बुलेंस पर हमले में 3 स्वास्थ्यकर्मियों के घायल होने की संयुक्त राष्ट्र मानवीय संगठनों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इस हमले में आपात स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के अलावा 2 अन्य चिकित्सा सहायक सवार थे। लीबिया में मानवीय समन्वयक मारिया रिबेरो ने हमले पर क्षोभ जताते हुए कहा कि एम्बुलेंस पर सीधे हमले में 3 स्वास्थ्यकर्मियों का घायल होना घिनौना है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लीबिया में प्रतिनिधि सैयद जफर हुसैन ने इसे स्तब्धकारी और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का असहनीय उल्लंघन बताया है। इस साल अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के सुरक्षा बलों और देश के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण करने वाले कमांडर खलीफा हफ्तार के वफादार सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और हजारों को विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा है। निकट पूर्व और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र के देशों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग अल्प पोषण का शिकार हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक नई रिपोर्ट में भूख और हिंसा के बीच संबंध को रेखांकित किया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा पीड़ित लोग हिंसा प्रभावित देशों में रह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हिंसक संघर्ष और संकटों के लंबे समय तक खिंचने से स्थिति लगातार बिगड़ी है, जिससे टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी बाधाएं आ रही हैं। निकट पूर्व और उत्तर अफ्रीका, नियर ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में लीबिया, यमन, इराक, लेबनान, मॉरिटेनिया, सूडान, सीरिया सहित अन्य देश आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल आबादी का 40% हिस्सा रहता है, लेकिन कृषि से औसत आय अन्य सेक्टरों की तुलना में बेहद कम है। ऐसे में शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी लगभग 2 गुनी है। म्यांमार में पुलित्जर पुरस्कार विजेता 2 पत्रकारों वालोन और क्या सोई ऊ को रिहा कर दिया गया है। दोनों पत्रकारों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मामले में दोषी पाए जाने के बाद पिछले साल सितंबर में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने 500 दिनों तक जेल में बंद रहे पत्रकारों की रिहाई का स्वागत किया है, लेकिन प्रेस आज़ादी पर मंडराते संकट पर चिंता भी जताई है। दोनों पत्रकार राखीन प्रांत में 10 रोहिंग्या मुसलमानों के कथित तौर पर सुरक्षा बलों और बौद्ध नागरिकों के हाथों मारे जाने की पड़ताल कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता रवीना शमदसानी ने कहा कि पत्रकारों को रिहा किया जाना अच्छी खबर है, लेकिन ना तो उन्हें दोषी करार दिया जाना चाहिए था और न ही जेल में बंद किया जाना चाहिए था।
Our office, you may recall, had put out a report in September last year, right after their sentences were first confirmed. And that report detailed.
आपको ध्यान होगा कि पिछले साल सितंबर में हमारे कार्यालय ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो पत्रकारों को सजा सुनाए जाने के कुछ ही दिन के भीतर बनी थी। उस रिपोर्ट में विस्तार से म्यांमार में अभिव्यक्ति की आज़ादी की मुश्किल स्थिति पर लिखा गया था और वो अब भी नहीं बदला है। ये थी यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदसानी। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही दशकों में दुनिया से जानवरों और पौधों की 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने की आशंका है। जर्मनी के बॉन शहर स्थित इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की ओर से तैयार ग्लोबल असेसमेंट स्टडी में मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर अहम जानकारी दी गई है। रिपोर्ट उन कारणों की भी जांच करती है जिनके चलते पिछले 50 सालों में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। इसकी मुख्य वजह भूमि और समुद्र के इस्तेमाल में बदलाव, जीवों के प्रत्यक्ष दोहन, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को बताया गया है। रिपोर्ट का कहना है कि मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद 2016 तक पालतू स्तनधारी पशुओं की करीब 6000 में से 559 प्रजातियां विलुप्त हो गई। उनका इस्तेमाल भोजन तैयार करने और कृषि उत्पादन में किया जाता था। 1000 प्रजातियों पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों के तहत 6 नई हस्तियों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट्स या टिकाऊ विकास लक्ष्यों के पैरोकार के तौर पर चुना गया है। इनमें भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा भी शामिल हैं, जो फिलहाल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत हैं। टिकाऊ विकास के कुल 17 लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य भुखमरी, गरीबी को समाप्त करना, सभी के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। साथ ही उनमें जलवायु परिवर्तन, अच्छे और उपयुक्त कार्य और महिला समानता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। टिकाऊ विकास लक्ष्यों के लिए चुने गए पैरोकार विविध पृष्ठभूमियों और क्षेत्र से आते हैं और सरकारी क्षेत्र, मनोरंजन, शिक्षा, खेल, व्यवसाय और सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। इनमें नाइजीरिया में कानो के अमीर महामहिम मोहम्मदू सानुसी द्वितीय, सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता हिंडाऊ उमारू इब्राहिम, ग्लोबल स्ट्रेटजीज ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन के संस्थापक एडवर्ड नुडोपो, नोबेल पुरस्कार विजेता नादिया मुराद, फुटबॉलर मार्ता बियरा द सिल्वा और दिया मिर्जा हैं। सभी को मिलाकर ये 17 हस्तियों का प्रभावशाली समूह है, जिनका दायित्व जागरूकता फैलाना, महत्वाकांक्षी कार्रवाई के लिए प्रेरित करना और टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर तेज कार्रवाई के लिए वकालत करना है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।